कर्म योग और भक्ति योग इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। कर्म योग का सहारा भक्ति के लिए ही लिया जाता है। क्योंकि हम जानना तो ईश्वर को चाहते हैं, मिलना तो ईश्वर से चाहते हैं, या यूं कह लें कि अपने अपनी देह के अंदर ही ईश्वर से भेंट करना चाहते हैं या ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। तो प्रेम से ईश्वर की याद करना ये भक्ति है। लेकिन जब हम प्रेम से ईश्वर की याद करने बैठते हैं तो बाधा क्या आती है? बाधा एक ही आती है कि मन के अंदर संसार के संकल्प चलते रहते हैं। कोई काम अधूरा रह गया, उसके संकल्प चलेंगे। कोई काम बिगड़ने की संभावना है, उसके संकल्प चलेंगे। कोई काम अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा करना है, उसके संकल्प चलेंगे। किसी के ऊपर क्रोध कर दिया तो उसकी याद आएगी, किसी से दिल लग गया उसकी याद आएगी। तो सैकड़ों तरह के संकल्प हमारे अंदर बीसियों कारण से चलते रहते हैं। उसका कारण ये है कि हमारी जो दैनिक लाइफ है वो चारों तरफ के वातावरण पर निर्भर करती है। जो लोग जुड़े हुए हैं मेरी देह के साथ में, या मेरे कारोबार के साथ में, जहाँ जहाँ से मुझे सुख प्राप्ति की उम्मीद है, जहाँ से मुझको काम बनने की उम्मीद है, या जहाँ से मेरे काम बिगड़ने की उम्मीद है, इन सबकी याद मुझे आती रहती है। तो इसी को कहते हैं ये वासना का फैलाव है या इच्छाओं का फैलाव है। तो मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा मुझे। ईश्वर का निश्चय है, ये भी सुनी सुनाई बात है। ईश्वर का भी वैसा निश्चय नहीं है जैसा होना चाहिए। और उसका कारण यह है कि मुझको अपने बारे में ही सही निश्चय नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या स्थिति है। मुझको अपने बारे में ही सही निश्चय नहीं है। हालांकि चाहे समता विलास पढ़ लें, चाहे गीता पढ़ लें, या किसी भी सत्पुरुष का शास्त्र पढ़ लें, हर जगह एक बात आपको बड़ी सामान्य सी नजर आएगी कि देह की मृत्यु के पश्चात मैं बच जाता हूं, मेरी मन इंद्रियां भी बच जाती हैं, और सारा कर्म फल जो नहीं भोगा है वो भी बच जाता है, और जिंदगी भर जो कर्म करता रहा उसके संस्कार भी बच जाते हैं, उसके इंप्रेशंस, उसके जो संस्कार हैं वो मन के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अब महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी, एक जोंक का एग्जाम्पल देकर कि जिस प्रकार जोंक चलती है, तो पहले आगे मुंह अपना जमा लेती है, फिर पूंछ पीछे से उठाकर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार जीव मृत्यु के समय अपना अगला जन्म निर्धारित कर लेता है, फिर इस देह का त्याग करता है, अर्थात नई देह में प्रवेश करता है। अर्थात बगैर देह के जीव एक सेकंड भी नहीं रहता। लेकिन ये तो मुझे अपने बारे में भी मालूम है, सबके बारे में मालूम है, ये देह मर जाती है। तो विचार करने की चीज यहां पर ये है कि मैं कौन हूं? मैं वही तो हूं जो बच गया, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती। लेकिन देह के बारे में तो मैं सबके सबकी देह के बारे में जानता हूं, कोई भी इसको मार सकता है, कोई भी इसको जला सकता है। लेकिन जब तक देह मेरी रहती है और संसार में जीता हूं मैं, मेरे कभी ख्याल भी नहीं आता कि मैं देह नहीं हूं, ये ख्याल भी नहीं आता कि मैं देह नहीं हूं। ये देह नाशवान चीज है, जिसको गुरु कह रहा है कि प्रेमी मौत को याद रखो। क्यों? क्योंकि देह नाशवान है और इस देह करके जो कुछ भी तू करेगा सबके संस्कार तो इकट्ठे करके ले जाएगा, वो अगली देह में तेरे लिए मुसीबत बनेंगे। इसलिए संस्कार बनाने ही है तो ऐसे संस्कार बना जो तेरे लिए सहायक हो, अगली देह में मुसीबत ना बने। लेकिन इस बात को इस रूप में हम कहां सोचते हैं? आप खुद ही अपने अपने बारे में विचार करके देखो, ऐसा सोचते हैं हम क्या? महाराज जी की यही बातें हम सैकड़ों बार सुन चुके होंगे या सुन लेंगे, लेकिन इस पर मनन करते हैं क्या? इस तरह से मनन करते हैं? हम ये तो कहते हैं महाराज की बात बिल्कुल ठीक है, गीता की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस बारे में सोचते कहां हैं? जब महाराज जी बात मौत की करते हैं, मौत की याद का मतलब ये सोच रहे हैं आप, इस देह की मौत के बाद मेरे साथ क्या जाएगा? अगली देह का निर्माण तुरंत हो जाएगा, उस देह में मैं क्या क्या भोगूंगा? तो जब तक ये निश्चय आपका पक्का नहीं है, ईश्वर का निश्चय पक्का कैसे हो सकता है आपका? क्योंकि जीव का संबंध ईश्वर के साथ में और देह का संबंध प्रकृति के साथ में। पांच तत्व से देह बनी है, पांच तत्व की प्रकृति है। तीन गुण देह के अंदर है, तीन गुण प्रकृति के अंदर है। पांच विकार देह के अंदर है, पांच विकार प्रकृति के अंदर है। तो देह तो प्राकृतिक चीज है और जीव का संबंध ईश्वर के साथ है, ये इसकी वास्तविक स्थिति है। तो जीव जब तक देह के मोह में जिएगा कि मैं देह हूं, तब तक इसका हर कर्म गलत होगा। कुछ भी संसार में क्यों ना कर ले, इसका जो प्राकृतिक जीवन है वो पांच विकार युक्त है और तीन गुणों से युक्त है, वो इसके लिए मुसीबत ही बनेगा, बेचैन ही करेगा इसको। तो इसलिए अब सत्पुरुष आपको पहले यही ज्ञान देते हैं कि तू है कौन, ये विचार कर, ईश्वर क्या है ये विचार कर। तो वो कहते हैं कि इस देह का जो मालिक है वो ईश्वर है, इस देह के अंदर जो जान है वो ईश्वर है, ना मन ईश्वर है, ना इंद्रियां ईश्वर है, ना देह ईश्वर है। और बेचैन कौन है फिर? ईश्वर तो बेचैन नहीं है। आपका दिल कहेगा कि ईश्वर बेचैन है, लेकिन मुझे पता है मैं बेचैन हूं, मुझे भय भी है, मुझे चिंता भी है, इच्छाएं भी मुझे परेशान करती हैं, लोग भी मुझे परेशान करते हैं, सारी प्रकृति कहीं ना कहीं मेरे मानसिक क्लेश का कारण बनी हुई है, ये मेरा अनुभव कह रहा है, अनुभव कह रहा है। तो मैंने गुरु धारण किया है, आप किस लिए धारण किया है? कि वो इस मानसिक क्लेश से मुझको मुक्त कर देगा। अब जरा विचार करके देखो, मन के अंदर निरंतर इच्छाओं के परिवर्तन हो रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जो वस्तुएं संसार में है उसके अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, जो देह साथ लेकर घूम रहा हूं इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिन लोगों का संग मिला हुआ है उनके अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप जानते हो और वो स्थायी हो, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है? आज जो अच्छा आदमी है कल को बुरा आदमी हो जाता है, आज जो बुरा आदमी है कल को अच्छा आदमी हो जाता है, स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहा है। तो किस किस चीज को आप ठीक करोगे, हर चीज जो परिवर्तनशील है, मैं आपके मन के, मैं आपकी देह के, किस किस को ठीक करोगे? महाजी कहते हैं प्रेमी अच्छे से अच्छा भोजन ग्रहण कर लो, सादा भी कर लो, वैद्य की राय से भी भोजन ग्रहण कर लो, सारी प्रिकॉशंस रखो, परंतु प्रारब्ध का दुख जब आएगा तो भोगना ही पड़ेगा। आपकी देह भी रोगी हो जाएगी, सब कुछ ठीक करने के बाद भी देह को यदि रोगी होना है वो हो जाएगी और आपको भुगतना पड़ेगा। तो मनुष्य कितना लाचार है, जरा विचार करके तो देखो कितना लाचार है। लेकिन कोई मनुष्य इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचता, उनके सोचने के ढंग दूसरे हैं कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो कड़ी मेहनत करूंगा तो आगे से अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छी नौकरी नहीं मिली है ज्यादा तैयारी करूंगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है ज्यादा मेहनत करूंगा नए नए उपाय अपनाऊंगा तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा। सोचने का तरीका तो यह है। तो हर चीज तेरी जब बिगड़ रही है, हर चीज जब परिवर्तनशील है, समझनी, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। वाणी क्या कह रही है देखो, इसका अर्थ पर विचार करके तो देखें, इसका कठिन अर्थ तो नहीं है। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। सूत्र तो ये कह रहा है, केवल ईश्वर का नाम ऐसा है जो सारी तेरी सारी तकलीफ सारी मन की बेचैनी हर लेगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु बनी ही नहीं आज तक जो तेरे मन को चैन दे सके। अब बताओ, जिसको हमने गुरु बनाया है उसकी वाणी का निर्णय तो ये कह रहा है, फिर मैं संसार में क्या ढूंढ रहा हूं, मैं इस संसार में क्या तलाश कर रहा हूं? और सारे गुरु को मानने वाले संसार में ही शांति तलाश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सत्य यही है, दिल उनका संसार में ही लगा हुआ है, आशा वहीं लगी हुई है कि ये संसार एक दिन मेरा जरूर ठीक हो जाएगा, चैन से जीऊंगा। गुरु बनाने के बाद भी संसार से आशा नहीं टूट रही मेरी। तो ये सिद्ध करता है कि मुंह से मैं कुछ और कह रहा हूं लेकिन मेरे अंदर ईश्वर निश्चय नहीं है। प्रैक्टिकल फैक्ट यह है कि मेरे अंदर ईश्वर निश्चय नहीं है, निश्चय मेरा अपने कर्म पर है, अपनी देह पर है, अपनी चतुराई पर है। कोशिश करके इस संसार में मैं चैन से जी सकता हूं, निश्चय मेरा यहां खड़ा हुआ है। जबकि वाणी इस मनुष्य के हर निश्चय को तोड़ रही है। आप संत विलास पढ़कर देख लो, संसार के बारे में जो कुछ भी आपने निश्चय बना रखा है हर निश्चय संतवला साहब का तोड़ देगी। तभी तो आप ईश्वर का होके जियोगे, ईश्वर का होके आप तभी जियोगे। अर्जुन के अंदर कितने निश्चय बैठे हुए थे, कितने तर्क वितर्क किए उसने कृष्ण के साथ में, अंत में जाके उसने एक्सेप्ट किया कि आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, अब आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं। और कृष्ण भी फिर अंतिम बात कह रहे हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि तू सारे धर्मों का त्याग करके, धर्म का मतलब है जो उसकी कर्म में आस्था है, भाई क्षत्रिय है वो, राजघराने में पैदा हुआ है, युद्ध करना, आतताइयों का दमन करना उसका धर्म है, प्रजा की रक्षा करना उसका धर्म है, तो ये सारे धर्म कर्म ही तो हैं उसके। तो जहां जहां उसकी कर्म में आस्था है वहां वहां कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सारे धर्मों का त्याग करके अर्थात अपने कर्तापन का त्याग करके तू मेरी शरणागत हो जा। तो सारे कर्मों का आसरा छोड़कर ईश्वर का आसरा पकड़ने को कृष्ण कह रहे हैं उससे। शरणागति इसी का नाम तो है। जब तुझको अपना कल्याण केवल ईश्वर के चरणों में नजर आए, ईश्वर की भक्ति में नजर आए, इसी का नाम शरणागति है। नहीं तो संसार की शरण में रहेगा, परिवार की शरण में रहेगा, अपनी देह की शरण में रहेगा, उसके लिए कर्म करेगा, वहीं से आशा करेगा। तो इसी शरणागति का नाम भक्ति है। तुझको अपने जीवन की आशा केवल ईश्वर के चरणों में हो, इसका नाम भक्ति है। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने प्रेम से ईश्वर की याद करनी है, प्रेम से मैं ईश्वर की याद करना चाहता हूं, लेकिन विवेक परिपक्व नहीं है मेरे अंदर, समझ परिपक्व नहीं है, समझ मेरी पक्की नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसीलिए एक तरफ तो मैं सिमरन करता रहता हूं, प्रभु की प्रेम से याद करने की कोशिश करता हूं, दूसरी तरफ मन के चंगुल में फंसा रहता हूं, अपनी कल्पनाओं में फंसा रहता हूं, अपनी डिजायर्स में फंसा जाता हूं। तो इसीलिए ये टग ऑफ वार, रस्साकशी चलती रहती। दिल कहता है कि ईश्वर की याद करो, इससे तेरा कल्याण होगा, लेकिन स्वभाव कहता है संसार की याद करो, इसमें तुझे सफलता मिलेगी, इसमें सुख मिलेगा। तो ये जो द्वंद्व है, ये सिद्ध कर रहा है कि तेरे अंदर निश्चय दोनों चीज का बना हुआ है, संसार का निश्चय भी बना हुआ है और कर्तार का निश्चय भी बना हुआ है, निर्णय कोई नहीं हो पाया तेरा, तू अभी दुविधा में फंसा हुआ है, निश्चय तेरा दोनों जगह अटका हुआ है। इसीलिए तेरी भक्ति करते हुए भी तेरी हालत बेचैनी की बनी रहती है, लेकिन रास्ता इसी तरह तय होता है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए महाज कह रहे हैं, प्रेमी स्वाध्याय जरूरी है। भक्त बनारसी दास जी का जब उन्होंने प्रोग्राम लिखा महाराज जी ने अपने अंतिम वर्ष में, तो भगत जी को एक पर्ची लिख के दी महाराज जी ने, प्रेमी दो वक्त जो है कम से कम 2 घंटे अभ्यास किया कर और 2 घंटे स्वाध्याय में लगाया कर, वाणी का स्वाध्याय, समता विलास का स्वाध्याय, क्योंकि महाराज जी कब तक बैठे रहते शरीर रूप में। तो 2 घंटे स्वाध्याय के लिए उन्होंने भगत जी को क्यों कहा, क्योंकि मैंने शास्त्र के माध्यम से इन्हीं बातों को तो सोचना है। महाजी की संता विलास पढ़ो, उसमें लिखा क्या है, इसी का ही विश्लेषण लिखा होगा एक सिस्टमेटिक तरीके से। याद संता विलास को याद करने की चीज नहीं है, उसको याद कर लिया, सोचने का एक सिस्टम उसमें दे रखा है। मैंने उस तरीके से अपनी देह के बारे में, जीवन के बारे में, ईश्वर के बारे में उस तरीके से सोचना है। कर्म किस प्रकार करने हैं वो भी लिखा हुआ है, पाप कर्मों को पूरी तरह से तिलांजलि 100% जो गलत कर्म है, और फिर जो सुख प्राप्ति के कर्म है जिसके मैं इंद्रियों के भोग भोगता हूं, उसमें वो मर्यादा की बात कर रहे हैं कि इतने भोग तेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उनके शौक मत पाल, जिस चीज का भी तुझको शौक पड़ा हुआ या आदत पड़ी हुई है वो तेरे लिए ईश्वर भक्ति में बाधक बनेगी, इसलिए धीरे धीरे तुम्हें उसको मर्यादा में लाना है। यदि शौक पूरा किया उससे नुकसान क्या होगा, उस नुकसान को तुम्हें ध्यान में रखना है, इसलिए तेरी तेरी जो मन की आसक्ति है वो वहां से हट जाएगी। जैसे कि शुगर का पेशेंट मिठाई में दोष देखता है कि मेरी बॉडी की शुगर बढ़ जाएगी तो शरीर वीक हो जाएगा मेरा, तो दोष देखने से क्या होता है, मिठाई स्वादिष्ट लगने के बाद भी उसे वो परहेज करता है। तो संसार की वस्तुओं में दोष दर्शन, इससे मेरा बिगाड़ क्या होने वाला है, उस दोष दर्शन से धीरे धीरे क्या होगा, तेरा जो राग है, तेरी जो आसक्ति है, वो उसमें कम हो जाएगी। और इसके मुकाबले में तेरे जीवन में जिस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके प्रति तेरे मन के अंदर जो है वो प्रेम बढ़ेगा और संसार के प्रति वैराग्य बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति जब आएगी, ये विवेक की स्थिति है तेरी, अर्थात बुद्धि तेरी ठीक सोच रही है, ठीक निर्णय कर रही है, इसीलिए तू अब ठीक कर्म करने की ओर अग्रसर हो चला है। लेकिन यदि ईश्वर की बात देखें तो ईश्वर क्या है, निर्गुण है, वो तीन गुणों से मुक्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से वो मुक्त है। और ईश्वर के गुण क्या है, निर्वास है, वो इच्छा रहित है, उसमें कोई इच्छा नहीं। तो यदि मैंने ईश्वर प्राप्ति करनी है तो मेरी वो स्थिति पहुंचनी चाहिए मन की, कि एक भी इच्छा इसमें बाकी ना बच जाए, क्योंकि हर इच्छा तुमको तीन गुणों से बांध देगी, पांच विकार से बांध देगी। और पांच विकार की जो हालत वाणी बयान कर रही है, वो कह रही है कि पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। सारा संसार इस पांच विकार की इच्छाओं में जल रहा है, और बिना ईश्वर की प्रतीति के, उसके विश्वास के, उसके प्रेम के, ये इससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। तो पांच विकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने ईश्वर का आसरा लिया है, ईश्वर से प्रेम करना शुरू किया है। तो ये सारी बातें जब तक मेरे मन के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर हर समय नहीं घूमती रहती हैं, तब मैं इन विकारों से कैसे बच पाऊंगा। ये कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, सारी संतवास पढ़ोगे तो रिपीटेडली इन्हीं बातों को, जगह जगह वाणी में भी इन्हीं बातों को दोहराया गया है। लेकिन चिंतन ही इसी बात का करना है, क्योंकि ईश्वर की प्रीति में, ईश्वर की तरफ बढ़ने में यही यही चिंतन तेरा सहायक होगा। जब तक संसार की इस जो ये सुख भोग हैं, इसके प्रति तेरे मन के अंदर वैराग्य भाव नहीं आएगा, अर्थात इसमें इसके प्रति जो राग है, जो खिंचाव है, वो तेरा भंग नहीं होगा, तब ईश्वर में प्रेम तेरा लगेगा, बनेगा कैसे बताओ? प्रेम से ईश्वर की याद कर कैसे पाएगा? तो फिर यही अफसोस होगा, अरे ईश्वर की याद प्रेम से कर रहा हूं, मेरी शाम की पिक्चर तो छूटी गई, शाम को पिक्चर देखा करता था, घूमने जाया करता था, शाम को सिमरन करता हूं, सारा मनोरंजन तो मन का खत्म हो गया, यही तो याद आएगा फिर आपको। तो इसीलिए बिना विवेक के ये यात्रा आपकी तय नहीं हो सकती, बिना विवेक के आपके मन के अंदर संसार के भोगों के प्रति वैराग्य भाव नहीं आ सकता। और विवेक केवल सत्पुरुषों के जो वचन है, सत्पुरुषों की जो वाणी है, उसके स्वाध्याय और उसके गहरे मनन से ही ये विवेक बुद्धि में टिकता है। इसलिए इसके प्रति जो लापरवाह है, उसका टाइम काफी बेकार चला जाएगा। सिमरन भी करेगा वो, सत्संग भी श्रवण करेगा, लेकिन विवेक उसके बुद्धि में टिकेगा नहीं। विवेक उसकी बुद्धि में टिकता है जो खुद स्वाध्याय भी करता है और गहरा मनन भी करता है। ऐसा व्यक्ति जब सत्संग भी सुनता है ना, तो सत्संग बुद्धि में टिक जाता है, उसकी समझ जाता है। तो जब ये सारा विवेक का वातावरण उसके मन में तैयार होता है, बुद्धि उसमें उसके निश्चय में जब टिक जाती है, तब जाकर इसको कर्म के दोष नजर आते हैं। हर कर्म में दोष क्या है, आप कोई भी कर्म करो, चाहे बुरा कर्म करो, चाहे भोग विलास का कर्म करो, चाहे अच्छे कर्म करो, परोपकारी करो आप, चाहे कर्म जब करोगे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, उसमें लगना भी पड़ेगा, और जिस उद्देश्य के लिए कर्म कर रहे हो, जिस फल प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हो, उस फल के बारे में ही सोचना पड़ेगा आपको। क्योंकि हमारा हमेशा स्वभाव है कर्म करते हुए फल की बेचैनी हमारे मन में बनी रहती है कि कर्म कर रहा हूं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कर्म मेरा पूरा हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई बाधा तो नहीं आ जाएगी। तो कर्म करने से पहले भी बेचैनी रहती है, कर्म करते हुए भी बेचैनी रहती है, और कर्म फल की जब प्राप्ति होती है उसमें भी बेचैनी रहती है। मन अनुकूल फल मिल भी गया तो आगे चल के बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिक्वायरमेंट ही बदल जाती है। तो इसीलिए मनुष्य कैसा भी कर्म क्यों ना करे, पाप कर्म तो महाबेचैनी देता है, पाप कर्म महाबेचैनी देता है। और स्वार्थ कर्म जिसको हम कहते हैं सुख प्राप्ति के लिए कर्म, वो उसके मुकाबले में कम बेचैनी देता है, बेचैनी वो भी देगा आपको। और यदि अच्छे कर्म करूं, परोपकारी कर्म करूं, बेचैनी उसमें भी मिलेगी आपको, उसमें उससे कम बेचैनी मिलेगी। तो कर्म तो झंझट है, ये पक्की बात है, लेकिन इससे मैं बच भी नहीं सकता। बच इसलिए नहीं सकता क्योंकि देह के कर्म प्रारब्ध डिसाइड करता है। जिस कर्म को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, महर्षि रमण कह रहे हैं, वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब देखिए महर्षि हैं, वो दोनों बातों को बिल्कुल अलग कर रहे हैं, देह को और तुमको, दोनों को अलग करके संबोधन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिस कर्म को करने के लिए देह पैदा हुई है, वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये ज्ञान है, ये विवेक है। तो ऋषि की बात यदि हम ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, तब यही पता लग जाएगा कि वो दोनों को अलग करके देख रहे हैं, देह का बंधन क्या है और जीव का अज्ञान क्या है। जीव की अज्ञानता यही है, वो ये सोचता है कि मैं जो चाहूंगा कर लूंगा। जीव की अज्ञानता यह है कि वो समझता है कि जो चाहूंगा मैं इस देह से कर लूंगा, देह प्रारब्ध के अधीन है, और इसको चलाने वाला ईश्वर इस देह के अंदर बैठा हुआ है। तेरे जिस्म के अंदर जान तो उसी का नाम तो ईश्वर है ना, तो देह तो उसके कारण चल रही है, तेरे कारण तो चल नहीं रही है, तू तो अहंकारी है। इसलिए कर्तापन को भ्रम कहा गया। तेरे अंदर कर्तापन तो है कि मैं देह से कर्म करता हूं, इसको भ्रम कहा गया। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। तूने अकर्ता होना है, यह ज्ञान की सार है। इसका मतलब हो गया मैं अकर्ता ही हूं, मेरा जो असली स्वरूप है वो अकर्ता ही है, तो इसलिए मैंने अपनी संपत्ति, अपना निज रूप या अपना जो मेरा असली मेरी स्थिति है वो मैंने प्राप्त करनी है, वो अकर्ता स्थिति मैंने प्राप्त करनी है। तो अकर्ता स्थिति तेरी कब बन सकती है, जब देह का मोह तेरी तरह से 100% खत्म हो जाए, क्योंकि देह प्रार्थ के अधीन है, इससे तो कर्म होंगे। अब अर्जुन की लाचारी यही तो थी कि अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण पूछते हैं क्यों नहीं करेगा, कहते मुझे चाहिए ही कुछ नहीं, मैं तो संन्यास ले लूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तेरी देह तो प्रारब्ध के अधीन है, देह तो युद्ध करने के लिए पैदा हुई है, इस देह तो युद्ध करेगी। अब अर्जुन फंस गया, अब क्या करे वो, या तो ये कहेगा कृष्ण की बात गलत है, वो तो कृष्ण की बात तो गलत नहीं कहेगा वो, तो यही पूछा उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा तू निष्काम कर्म कर, तू निष्काम कर्म कर। तो निष्काम कर्म कौन सा होता है, जिस कर्म के फल के बारे में तेरे मन में कोई भी कामना ना हो, जिस कर्म का जो कुछ फल, फल तो मन के अनुकूल भी हो सकता है, मन के प्रतिकूल भी हो सकता है, लेकिन उसके फल के बारे में कैसा भी फल तुझे क्यों ना मिले, चाहे तेरी आशा के बिल्कुल प्रतिकूल फल मिले, चाहे आशा के अनुरूप फल मिले, उस फल का असर तेरे मन पर बिल्कुल ना हो। कर्म करने की वो स्थिति निष्काम कर्म कहलाती है। और कर्म करते वक्त भी एक निश्चय मन में बना रहता है कि इस देह से वही कर्म हो पाएगा जो प्रभु ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। इसका मतलब यह कर्म करते वक्त मैं जरूर सोचता विचारता हूं, ठीक करने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्या हो पाएगा? जो हो पाया, जो बन पाया, उसके बारे में पक्का निश्चय होता है इस भक्त के अंदर कि प्रभु ने यही करवाना था इस देह से। तो उसका संबंध बस करने तक रहता है, उसके बाद उससे वो निर्लेप है। उसका फल जो भी होगा प्रभु मालिक, जब कर्ता प्रभु है तो फल के मालिक भी प्रभु है। तो ना इसकी कर्म में आ सकती है, तो ना इसकी कर्म फल में आ सकती है, ना इसकी कर्म ना करने में आ सकती है कि मैं ये काम नहीं करता, नहीं करूंगा। उसके अंदर विचार आता है कि मैं ना करने वाला कौन होता हूं या करने वाला भी कौन होता हूं। जब देह से कर्म ईश्वर ने प्रारब्ध के अधीन करवाना है, जिसको गीता कह रही है भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सारे प्राणियों को मैं इस संसार में भरमाता हूं उनके प्रारब्ध के अनुसार। तो इस शरीर रूपी यंत्र के मालिक तो ईश्वर है, प्रभु है। वो प्रारब्ध के अनुसार इस मेरी देह को चला रहे हैं, और इस देह को नहीं चला रहे हैं, संसार में जितने जीव हैं उनकी देह को चला रहे हैं और पूरी प्रकृति को चला रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, धरती, जो कुछ भी है प्रभु ही चला रहे हैं, मनुष्य कहां चला रहा है इनको? और मनुष्य का, सारे जीवों का जीवन इन्हीं पर तो आधारित है। पवन बिगड़ जाए जीवन बचेगा, जल बिगड़ जाए जीवन बचेगा, धरती बिगड़ जाए जीवन बचेगा, सूर्य बिगड़ जाए जीवन बचेगा, मनुष्य का तो रोल ही कोई नहीं है इसके अंदर। तो सारी प्रकृति ईश्वर चला रहा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ता इसको। मनुष्य की करनी तो याद करता हूं, ईश्वर की करनी मुझे याद ही नहीं आती। तो इस पूरे चक्र को जब इंसान जो है इन सत्पुरुषों की वाणी के आधार पर देखता है, तब उसको याद आती है प्रभु की करनी, कि प्रभु क्या कर रहे हैं और उसके मुकाबले में मनुष्य का क्या रोल है। मनुष्य तो अपने जिंदगी में कर्म का कर्ता बनके, कर्म का अहंकारी बनके मुसीबतें ही पैदा कर रहा है। मनुष्य तो कर्म का कर्ता बनके अपने लिए मुसीबतें ही पैदा कर रहा है अज्ञानता के कारण। तो इसीलिए जब ये सिमरन करता है, कहता है मेरे अंदर ईश्वर निश्चय है, ईश्वर विश्वास है। किस लिए विश्वास है? विश्वास मैंने ईश्वर पे इसलिए किया है कि ईश्वर जब मिलेगा तो मुझे चैन मिलेगा, ईश्वर जब मिलेगा तो मुझे शांति मिलेगी, जो संसार में जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। यही निश्चय तो होना है आपका, इसलिए तो ईश्वर को, इसलिए तो आपने ईश्वर पे निश्चय किया है, या और कोई कारण है? जब तेरी जिंदगी का चैन ईश्वर में है तो तेरे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया फिर? सिमरन हुआ नहीं हुआ? जब तेरा निश्चय ईश्वर पर है कि ईश्वर में चैन है, ईश्वर में शांति है, तो तेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम ईश्वर सिमरन हुआ या कोई और बचा? तो इसलिए तेरी पूरी कोशिश इस कर्म में सफलता प्राप्ति की रहती है कि किसी प्रकार प्रेम से ईश्वर की याद करने में मैं सफल हो जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैं 2 घंटे निकालता हूं ईश्वर की याद के लिए, और 2 घंटे भी मैं संसार का चिंतन करता रहूं, ईश्वर की याद ही ना आए, तो ये क्या हालत है मेरी? कैसे ईश्वर मिलेगा? तो इसीलिए ईश्वर के सिमरन में मुझे सफलता मिले, इसके लिए फिर मैं शास्त्र का स्वाध्याय करता हूं, सत्संग का श्रवण करता हूं, और ऐसे लोगों का संग करता हूं जिनकी बुद्धि प्रकाशित है, विवेक है जिनकी बुद्धि। तो धीरे धीरे करके सारे शास्त्रों का जो मर्म है वो एक ही निकलता है कि तूने अपनी वासना को, इच्छाओं के फैलाव को धीरे धीरे सिकोड़ना है, कम करते जाना है, कम करते जाना है। इसकी कोई सीमा नहीं है कम करने की। अंत में इतनी कम हो जाएंगी कि भूख लगेगी तो खाने की याद आएगी, भूख नहीं लगेगी तो खाने की याद भी नहीं आएगी, ठंड लगेगी तो कपड़े की याद आएगी, ठंड नहीं लगी तो कपड़े की भी याद नहीं आएगी, अर्थात इनके इनके प्रति आसक्ति तेरी रहेगी नहीं। तेरे जीवन का एक ही गोल रह जाएगा कि ईश्वर का सिमरन, ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन देह से कर्म तेरे होंगे, सब तरह के कर्म होंगे। ये तूने चार बच्चों का पालन करना है तो चार बच्चे तेरे घर में पैदा होंगे और तू पालन करेगा उनका, वो तेरा प्रारब्ध। अभी तो तू आसक्ति करके, मेरे बच्चे हैं ये, मैं इनका पिता हूं, मोह करके पालन करता है, फिर तू फर्ज करके पालन करेगा, ईश्वर का हुक्म पालन करने के लिए उनका लालन पालन करेगा, क्योंकि प्रकृति ईश्वर के हुक्म में चल रही है। तो हर चीज को तू ईश्वर के हुक्म के अंतर्गत देखने वाला बनेगा, अर्थात ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो, ये तेरी भाव, तेरी ये तेरी भावना बनी रहेगी। जैसे कि महाराज जी ने एक उदाहरण सुनाया करते थे कि एक साधु था, एक टीले पे उसकी कुटिया थी, गांव पास में ही था। एक दिन क्या हुआ, बाढ़ आई, बराबर में नदी बह रही थी, तो जो टीला था उसकी मिट्टी वो कटने लगी, तो गांव वालों को भय हुआ कि गांव तो बह जाएगा। तो गांव वाले साधु के पास आ गए, बोले महाराज रक्षा करो। बोले क्या हो गया? बोले टीला जो है वो कट रहा है, ये पानी गांव में आ जाएगा, गांव बह जाएगा, कुछ उपाय करो। साधु पे भरोसा तो होता है, महात्माओं पे, उनके पास ईश्वरीय शक्ति होती है, ऐसा लोग समझते हैं। तो उनका अच्छा सारा हालात देखे, उन्होंने कहा अच्छा फावड़ा लाओ। फावड़ा लाए वो, तो महात्मा जी ने क्या किया कि जहां से मिट्टी कट रही थी उसी के पास से मिट्टी फावड़े से काट के और नदी में वो फेंकने लगे, और बोले ईश्वर यदि चाहता है गांव बहे तो जल्दी बहे। और उनकी करनी देख के गांव वाले चकित, ये कर क्या रहे हैं? लेकिन कुदरत की करनी, ईश्वर की लीला। तो जहां वो मिट्टी गिर रही थी उनकी नदी के अंदर, पानी जो है उसके आगे से बहना शुरू हो गया, नहीं इधर का पानी ने कटाव छोड़ दिया। तो पब्लिक भी है और साधु भी है, साधु के अंदर क्या चल रहा है कि सारा जगत ईश्वर की इच्छा में चल रहा है। उसने यदि किसी गांव को डूबना है वो डूबेगा, डूबना ही चाहिए, पता नहीं किस किस के पाप इस डूबने से खत्म होने, तो वो तो ईश्वर की इच्छा में जी रहा है। और गांव वाले जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो मन की इच्छा में जी रहे हैं कि हमने हमें बचना ही चाहिए, ईश्वर का होश ही कोई नहीं। तो साधु में और साधारण व्यक्ति में अंतर एक ही तो हुआ कि साधु ईश्वर की इच्छा में जीता है, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, वो दोनों हालतों में उसका मन कभी नहीं डोलता कि हाँ ये क्या हो गया, पक्का निश्चय बना होता है कि ये ईश्वर की करनी। उसने प्रार्थ के अनुसार ये लीला रची है, लंबा चौड़ा प्रॉफिट भी हो गया, तो मेरी करने से नहीं हुआ है, वो मेरी चतुराई से नहीं हुआ है। यदि मेरी कहीं अकल काम आई है तो उस ईश्वर की देन है, वो अंतर्यामी ईश्वर है, ये अकल उसने प्रदान की है, क्योंकि प्रारब्ध ही मेरा वैसा है। इसीलिए होश बना रहना चाहिए, ये सारी माया का मालिक प्रभु है, मैं नहीं। तो इसीलिए वाणी करिए, कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण तिसला। देखो वाणी कितनी गहरी बात करती है, वो कहती कारण भी वही है कर्ता भी वही है। तू यदि अमीर हो गया किसी भी कारण से, तुझे लग रहा है मेरे पुरुषार्थ के कारण से हो गया, मेरी किसी ने मदद कर दी उसके कारण से हो गया, लेकिन वो कारण प्रभु ने पैदा किया है, तू लोगों को देख रहा है। इसलिए वाणी करिए कारण कर्ता जान के, वो कारण भी है और कर्ता भी है, वो कॉज एंड इफेक्ट दोनों है। ये हम कहां सोचते हैं, ये तो हम नहीं सोचते। कारण संसार में गिनाते हैं, देखो इसके कारण से हो गया, उसके कारण से हो गया, सोचते कभी प्रभु के कारण से हो गया। तो जब मेरी बुद्धि इस प्रकार से एनालिसिस करती है, वाणी का, सत्पुरुषों के वचनों का इस प्रकार से सोचती है, तो ये धीरे धीरे अपने शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं उनके कर्तापन से ये धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। प्रभु की याद हर वक्त इसके अंदर बनी रहती है और मन में जो कामनाएं उठती हैं संसार के भोगों की, धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगती है। ये ईश्वर के सिमरन में ही अपने जीवन की सफलता देखती है, ईश्वर के प्रेम में ही जीवन की सफलता देखती है, तभी इसको निष्काम कर्म की जरूरत महसूस होती है। तो जिस कर्म का असर मन पे ना पड़े करते हुए भी और कर्म खत्म होने के बाद उसकी फल प्राप्ति में भी, जब इसकी बेचैनी मन में इसके ना हो कर्म फल की, उस हालत में इसकी देह से निष्काम कर्म होते हैं। लेकिन ये स्थिति ऐसे ही नहीं आ जाएगी कर्म करते हुए, ये स्थिति अंदर जो ईश्वर के प्रति रंग लगता है आपके अंदर, ईश्वर के क्षेत्र का, ईश्वर के प्रेम का, ईश्वर शक्ति का अंदर जब अनुभव होता है, उसमें जब स्थिति होती है, जैसे जैसे उसके अंदर स्थिति आपकी गहरी होती जाती है, वैसे ही वैसे कर्मों के प्रति आसक्ति, उनके फल के प्रति आसक्ति तेरे अंदर से वीक पड़ती जाती है, कमजोर पड़ती जाती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि कर्म के प्रति आसक्ति तेरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ईश्वर के अंदर तेरा प्रेम इतना बढ़ जाता है तो ईश्वर के साथ मिलकर एक ही हो जाता है। तो वो स्थिति है निष्काम कर्म योग की और भक्ति योग की, वहां जाकर इन दोनों की पूर्णता होती है और ये मानव जीवन सफल होता है। ओम ब्रह्म सत्यम।